करि हरि अरहं स्वानुभूति रमहि रमण जगनायक जयवन् सिद्ध शुद्ध साधित सहज सरस सुधार सधार समय सार शिव सर्वगत नमत होहु सुखकार जयनी बानी विविध विधि वरन तविश्व प्रमाण स्यात् पद मुद्रित सहर करम सकल कल्याण मैं नमो नगन जैन जन ज्ञान ध्यान धन लीन मैं नमान बिन दान धन एन हीन तन चीन यह विधि मंगल करन ते सब विधि मंगल हो तौ दंगल दूरी सब समझो भानु दूर।
करना नियोग परिचय पुस्तक का आठवां पाठ हम देख रहे हैं। कर्म की अवस्थाएं हम सीख रहे थे, 10 अवस्थाएं याद है फिर? हाँ बोलो। बराबर, ये ऐसे कर्म की 10 अवस्थाएं होती है, उसका अर्थ क्या वो भी हमने क्रम से देखा था कि बंध 4 प्रकार से होता है, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाव बंध। उदय यानी कर्म जो स्थिति बांधता है, वो स्थिति बंध पूरी होने के बाद कर्म निकल जाता है, उस समय जीव को उसका फल भी मिलता है, तो उसको कहते हैं उदय। बंध होने के बाद और उदय होने के पहले वो जीव के प्रदेशों में ही वही एक क्षेत्रावकार रूप से पड़ा रहता है, उसको कहते हैं सत्ता। उदय तो देखिए उदीर्णा ने जो अपनी अभी स्थिति पूरी हुई नहीं है, फिर भी स्थिति पूरी होने के पहले ही वो उदय उदयावली के कर्मों में जुड़कर उसके साथ ही निकल जाता है, उसको कहते हैं उदीर्णा। उत्कर्षण और अपकर्षण में हमने देखे थे कि स्थिति और अनुभव जो है वो बढ़ना, यानी जो सत्ता में पड़े ना ऑलरेडी उसकी चर्चा है, उसमें स्थिति अनुभव बढ़ना उसको कहते हैं उत्कर्षण, और उसमें स्थिति अनुभव घटना उसको कहते हैं अपकर्षण। कल हमारी चर्चा हुई थी तो अपकर्षण और उदीर्णा में क्या अंतर है, ऐसा प्रश्न उठा था। देखो ये जो निषेक है क्रम से उदय में आने योग्य, तो जीव के परिणामों के कारण ऊपर के निषेकों में से कोई परमाणु अपनी स्थिति और अनुभव घटाते हैं, तो घटाते हैं तो हम उनको इनके साथ उनको गिनेंगे, इसलिए हम कहते हैं उनका वो हीन हुए, कम हो गए, स्थिति भी कम हुई और अनुभव भी कम हुआ, तो नीचे के निषेकों के साथ आ मिलते हैं, इसको कहा अपकर्षण। उदीर्णा में भी हमने ऐसे देखा था कि जो उदयावली के जो है निषेक उसमें ऊपर से कुछ परमाणु आ मिलते हैं, उसको कहते उदीर्णा। तो उदीर्णा भी एक प्रकार से अपकर्षण ही है, ये अकेले अकेले उदयावली में आते। अपकर्षण में क्या होता है कि ये ऊपर के निषेकों के अपने अपने नीचे के निषेकों में आ मिलते हैं, ये सारे को ही अपकर्षण कहते हैं, और अपकर्षण में से जो द्रव्य उदयावली में आएगा उसको हम उदीर्णा कहेंगे, यानी उदीर्णा होने वाला भी द्रव्य अपकर्षण होकर ही नीचे आता है, उसकी भी स्थिति घटके वो नीचे आता है, यानी वो उसी का एक भेद भी समझ सकते हैं। अपकर्षण होकर वो उदयावली में जुड़ेगा, क्योंकि ये जो उदयावली कहते हैं इसको, और उसके बाद उसमें बहुत सारे अलग अलग नाम है, उसमें हम जाएंगे नहीं, तो उसको कहते ऊपर वाले निषेक, ऊपरी तन स्थिति कहते ये उदयावली वाला, और इसके ऊपर का तो ऊपर में जाए तो उसको अकेला अपकर्षण ही कहेंगे, परंतु जो उदयावली में अपकर्षण होकर आएंगे परमाणु उसी को उदीर्णा कहेंगे। तो उदय देखा, उत्कर्षण अपकर्षण ये सारा देखा, फिर संक्रमण देखा था, तो संक्रमण में सजातीय प्रकृति होना आवश्यक है, ज्ञानावरण है वो दर्शनावरण मोहनी आदि नहीं बनेगी, परंतु वेदीय में जो सजातीय दो है साता और असाता, वो साता असाता रूप हो सकते, असाता साता रूप हो सकते, उसको कहते हैं सजातीय, परंतु आयु आपस में नहीं बदलेगी, मनुष्य आयु पलट कर नरकायु या तिरंचायु नहीं बनेगी, वो जो बांधी वो वैसी की वैसी ही रहेगी और उसको उसी फॉर्म में उसको भोगना पड़ेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होता। मोहनीय में भी दर्शन मोहनीय पलट कर चारित्र मोहनीय नहीं होगा, परंतु भी चारित्र मोहनीय ही आपस में उसमें संक्रमण हो सकता है। जैसे हमने देखा था कि अनंतानुबंधी पलट कर और प्रत्यकन प्रत्यकन संयोजन रूप हो जाता है, हमने कहा था उसको अलग नाम है, उसकी चर्चा भी नहीं करेंगे, जितना हमने पढ़ा है उसकी चर्चा करेंगे। तो मिथ्या तो भी जब सबसे पहले सम्यक होता है तो मिथ्या तो में से उसके सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्या तो ऐसे उसके अनुभागहीन होकर उसी को हम अलग नाम देते हैं। मिथ्यात्व से उसका अनुभव कर गया, उसमें संक्रमित हो गया, ऐसे भी कह सकते, उसको अलग अलग नाम है, परंतु ये सारे ही संक्रमण के ही भेद है। मैंने सजातीय अन्य प्रकृति रूप हो जाना, उसको अलग टाइप का नाम है, उसमें अभी नहीं जाएंगे। तो ये संक्रमण, फिर उपशम तो देखा था कि सबसे पहले सम्यक हो जाता है, मिथ्या को नीचे यू सम्यक में आता है, सादी अनादि मिथ्या दृष्टि। तो ये जो कर्मों का मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चार, इनका उपशम करके उसको औपशमिक सम्यक प्राप्त होता है, तो वहाँ उपशम है, कर्मों का उपशम है। और जब श्रेणी चढ़ता है, उपशम श्रेणी चढ़ता है जी, तब ग्यारहवें गुण स्थान में चारित्र मुनि का पूरा उपशम है, वहाँ भी औपशमिक भाव है, तो वहाँ कर्मों का उपशम है। निधत्य और निकाषित को भी देखा था कि जो उसी रूप में उदय में आए, निधत्य में देखा था कि संक्रमण भी न हो और उदीर्णा भी न हो, है ऐसे ही जब अपनी स्थिति पूरी करेगा तब उदय में आएगा, उदीर्णा करके पहले नहीं आएगा, तो उसको कहते हैं निधत्य। वो निकाषित में, निकाषित में निधत्य में तो अपकर्षण उत्कर्षण हो सकता है, उदीर्णा यानी वो उदयावली में जुड़े तो ही, और निकाषित में संक्रमण भी नहीं, उदीर्णा भी नहीं, उत्कर्षण भी नहीं और अपकर्षण भी नहीं, ये कुछ भी नहीं है, वो निकाषित। तो ऐसे हाँ 70 पेज वो फिगर के नीचे, हाँ वही वो गुजराती में भी फिगर दिख रही मुझे उनकी, उसके नीचे ही वो डेफिनेशन। और उसके भी हमने देखे थे कि उसके संबंध में बहुत ऐसी भ्रांतियां चलती है समाज में, क्योंकि ऐसे अनेक बताने वाले भी, उपदेश वाले करने वाले भी है, अरे क्या करे निधत्ति निकाषित कर्म ऐसा जीव, हाँ वो उसके पास है, वो कैसा होगा क्या होगा। उन्होंने देखा था ये जो निधत्तिपना है कर्मों में वो आठवें गुण स्थान के बाद चला जाता है, यानी उसमें जो ये जो कुछ संक्रमण वगैरह नहीं बनते थे, तो उसके बाद जीव के परिणाम इतने विशुद्ध हो जाते हैं कि उसमें ये नहीं होने का जो उसका वो कुछ था भाव कर्मों का, वो निकल जाता है। बाद में उसमें भी अपकर्षण वगैरह, अपकर्षण होने क्या कि वो स्थिति भी घटती है, अनुभव भी घटता है। देखिए हमेशा जो कर्म की निर्जरा होती है, तो निर्जरा में क्या होता है, ये जीव जब शुद्धोपयोग करता है, विशुद्ध परिणाम करता है, तो ये सारे ही अधिक स्थिति वाले कर्मों का अपकर्षण होकर होकर, यानी उसमें स्थिति भी घटती है और अनुभव भी अनंत गुना करता है, तो ऊपर के नीचे से नीचे आते रहते हैं, यानी यहाँ परमाणु की संख्या बढ़ती बढ़ती जाती है हर समय हर समय हर समय। तो बढ़ती हुई संख्या तो यहाँ वर्तमान में आई हुआ, अभी बहुत सारे यहाँ आ चुके, ऊपर के सारे नीचे आ गए, तो इसका जब उदय काल आ गया तो ये सारे खिल गए, और हर समय ऊपर से आ ही रहे, तो अपकर्षण करते 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 निकल जाने वाली परमाणुओं की संख्या असंख्य गुणा असंख्य गुणा असंख्य, यानी एक समय प्रबद्ध था ना, यानी एक बार अनंत था, तो उसके असंख्यात समय प्रबद्ध निकलना चालू हो जाते हैं, और उसी को हम निर्जरा कहते हैं। यदि क्रम क्रम से उदय में आते तो एक 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 समय करके वो करोड़ों सागरों तक बने रहते, परंतु सम्यक दर्शन की वजह से यानी क्या हुआ था, ये स्थिति और अनुभव घटते घटते सारे ही निषेक को नीचे के निषेकों में आ मिले, तो एक एक समय में बहुत सारे निषेक चले गए। वो अपकर्षण हुआ तो ये निर्जरा वाला अपकर्षण नहीं होता, ऐसा वाला अपकर्षण नहीं होता। तो ये जो निकल जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि अनेक समय प्रबंध निकल गए, तो इस तरह से अज्ञानी के जिसको मिथ्या दर्शन है उसने कितना भी तप किया तो भी उसका एक एक समय प्रबंध जाएगा, और जो ज्ञानी चौथे गुण स्थान वाला भी जो होगा तो वो एक समय में कितने सारे समय प्रबद्ध उसके उदय में आकर निकल जाते हैं, जिसको हम निर्जरा कहते हैं, कर्मों का खिरना कहते हैं, तो एक एक समय में इतने इतने सारे एक एक समय में इतने सारे ऐसे लगातार चलता रहता है। पांचवें में उसका प्रमाण और बढ़ता है, छठे सातवें में वो अपकर्षण होकर निर्जरा होने का प्रमाण और बढ़ता है, ऊपर के गुण स्थानों में और ज्यादा बढ़ता है। यानी कितने कर्म हो गए कि इतना सारा नीचे आते आते भी फिर भी देखो ना, अभी कोई तीर्थंकर है तो मुनि दीक्षा लेने के बाद भी कितने ही साल चले जाते हैं केवल ज्ञान होने के पहले। तो उसके पहले क्या होता है, ये सारा कर्म का निर्जरा ये इसी तरह से इसी प्रोसेस से चलती रहती है हर समय। तो ये सारे बहुत डिटेल बात में हम अभी नहीं जाएंगे, किस तरह से निर्जरा होती है इसका खाली हमें स्वरूप पता होना चाहिए। देखो ये ख्याल में आया ना, तो आठवें गुणस्थान के बाद ये जो अपकर्षण होकर नीचे नहीं आ रहे थे तो उसके भी अधिक अधिक प्रमाण में निर्जरा चालू हो जाते। तो ऐसे कहा होता है कि जिनविंब दर्शन से वो निदर्शन निकाचित पना खलास होता है। तो अकेले जिन देव का दर्शन करेंगे और स्वरूप पता नहीं है कुछ नहीं होगा, तो जिन बिंब दर्शन कब सच्चा होगा, जो सम्यक दृष्टि होगा। तो जिन बिंब को देखकर अपना जो दर्शन करे, अपना जो स्वरूप पहचाने, अपने स्वरूप में जो लीन हो जाए, उसी को इस तरह से निर्जरा हो सकती है। देखो हम यहाँ तक आए थे 71 पेज है हिंदी में, ये सैंपल है लिखा है ना उसके नीचे। कर्म की ये 10 अवस्थाएं जानने के बाद तुम्हें सवाल उठेगा कि शास्त्र में तो कर्म का क्षय या क्षयोक्षम होता है ऐसा कथन बारंबार आता है, परंतु इन 10 अवस्थाओं में तो उनका नामोल्लेख भी नहीं है। अपने को प्रश्न पड़ता है, ये बंध सत्ता उदय उन्म कहीं क्षय भी नहीं है और क्षयोक्षम भी नहीं है, वो भी कर्म की अवस्था है। उपशम का तो नाम लिया तो क्षय क्षयोक्षम का क्यों नहीं लिया? तो सुनो, कर्म का क्षय होना इसका अर्थ है कर्म का अकर्म रूप होना। कर्मान वर्गनाओं से कर्म बनता है, कर्म रूप अवस्था पलट कर यह कर्म पुनः कर्मान वर्गना रूप या अन्य पुद्गल रूप होता है, तब उस कर्म का नाश हुआ कहते हैं। अभी हमने देखा था ना, ये सारा उदय में आकर इतनी सारी निर्जरा हो गई, निकल गए, वो परमाणु अभी कर्म रूप नहीं रहे, कर्मान वर्गना से कर्म हुए थे, अभी कर्म से फिर दोबारा कर्मान वर्गना होंगे या अन्य वर्गना हो जाए, परंतु अब वो उसको कर्म नहीं कहेंगे। है तो पुद्गल पुद्गल ही, परंतु अब उसमें जो कर्मपना था, फल देने रूप जो शक्ति थी, जीव के साथ जुड़ा हुआ था, वो कर्मपना भी नष्ट हो जाएगा। अर्थात कर्म का उदय होने पर वह अपनी कर्मरूप अवस्था बदल कर कर्मान हुआ है, वो कर्मान वर्गना रूप होता है। यह अन्य पुद्गल रूप होता है, तब उस कर्म का नाश हुआ कहते हैं। अरे वो पढ़ा था, अर्थात दोनों जगह कर्म ऊपर और नीचे भी। कर्म का उदय होने पर वह अपनी कर्म रूप अवस्था बदल कर कर्मान वर्गना रूप होता है। ये वर्गनाएं वहीं पर जीव प्रदेशों में पड़ी रहती है या अन्यत्र जाती है, परंतु अब उनका जीव के साथ कोई निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं बनता। जो पंचाध्याय में बात आई थी कि उनका जीव के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध बना रहना यही बंध है। अकेले एक क्षेत्र अवगाह में इसलिए बंध ऐसा नहीं है, क्योंकि एक क्षेत्र में तो 6 द्रव्य रहते, धर्म अधर्म आकाश काल भी है, परंतु ऐसा हम कहीं नहीं कहते कि वो जीव के साथ बंधे हुए है। तो ये कर्मों का जीव के राग द्वेष में वो उनका उदय भी निमित्त है, और राग द्वेष के कारण नए कर्म भी फिर से जुड़ जाते हैं, तो इसलिए उसके साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसलिए उसको बंध कहते हैं। जब किसी भी कर्म प्रकृति का सत्ता में से पूर्ण नाश होता है तब उसे क्षय कहते हैं। हमने देखा ना अभी ये सारे निषेक पड़े हैं, तो निषेक क्षय और उदय में आते रहेंगे तब तक उसको क्षय नहीं कहेंगे। जैसे ये सारे मिथ्यात्व कर्म के निषेक पड़े हैं, पहले तो उपशम किया सम्य दृष्टि जीव ने, और फिर उपशम करने के बाद जब सम्यक हुआ तो उसके 3 टुकड़े हुए, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। फिर भी जब तक सत्ता में है तो ये सम्यक प्रकृति रूप से उदय में आ रहे, मिथ्यात्व यहाँ हमेशा भविष्य में पड़ा रहेगा। जब जब जीव सम्यक तो उसका चालू रहेगा तो ये मिथ्यात्व नष्ट होकर सम्यक प्रकृति, सम्यक प्रकृति, सम्यक प्रकृति रूप से उदय में आता रहेगा, परंतु भी सत्ता में है। जब तक मिथ्यात्व का क्षय नहीं करता, शायिक सम्यक दृष्टि नहीं होता, तब तक वो सत्ता में है। जब सत्ता में से पूरा उसका नाश हो जाता है तब हम कहेंगे वो कर्म दृष्टि हुआ, यहाँ मिथ्यात्व कर्म का यानी दर्शन मोहिनी कर्म का क्षय हो गया, यानी अभी सत्ता में उसका एक भी निषेक एक भी परमाणु बाकी नहीं, तब उसको हम क्षय कहते हैं, तब उसे क्षय कहते हैं। इसलिए कर्म की उदय अवस्था में क्षय अंतर्गत है, और वो भी क्षय कैसे होता है, वो निकल जाते हैं ना सारे परमाणु जल्दी जल्दी अपकर्षण होकर नीचे नीचे आते रहते हैं और सारे निकल जाते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि वो वहीं पर पड़े रहे, परमाणु तो अंदर पड़े रहे और हम उसको क्षय करें, वो तो छूट कर ही निकल जाएंगे जीव से। छूटना है ना, वो कर्मपना नहीं रहना, छूटना है ना अंदर से बाहर निकलना, ऐसा नहीं। कलम ने देखा था विश्व चौपचे रूप से वहीं पड़े रहेंगे, परंतु अभी उसको कर्म नहीं कहें, उसको कहते छूट जा। इसलिए जो क्षय है वो उदय के अंतर्गत है। कर्म की निर्जरा हुई ऐसा कथन भी बारंबार पढ़ने में आता है, उसका अर्थ देखते हैं। कर्म की स्थिति पूरी होने पर कर्म खिल जाता है, परंतु उसी समय उसका फल जीव को प्राप्त होता है, इसे उदय कहते हैं। समझे ना, उसका जो जो अनुभव बांधा था वो वैसा उसका कर्म का जो अनुभव है उसका फल जीव को मिलता है। जीव उसमें सुखी या दुखी होता है तब उसे कर्म का उदय यानी अनुभव उदय कहते हैं, क्योंकि कर्म कितने खिरे इससे जीव को कुछ लेना देना है, कौन सी प्रकृति निकल गई इससे भी जीव को कोई लेना देना नहीं है। कितने काल बाद अभी उसका उदय आया है, स्थिति उदय, जैसे बंद चार प्रकार का है ना, प्रदेश बंद, प्रकृति बंद, स्थिति बंद, उदय, ये अनुभव बंद, वैसे जब निकल जाएंगे तब भी उसमें चार बातें बनती। प्रकृति का उदय यानी ज्ञानावरण का उदय है, हम कहते हैं किसका उदय चल रहा है, तो सातावेदनी का उदय है, तो उसका प्रकृति उदय कहेंगे। प्रदेश उदय यानी कितने परमाणु निकल गए हैं उसको कहेंगे प्रदेश उदय। फिर स्थिति उदय, स्थिति उदय यानी कितने स्थिति वाला कर्म उदय में आता है, हमेशा एक स्थिति वाला, एक समय वाला, क्योंकि हमेशा एक ही समय का जो निषेक है उदय योग्य वही खिरेगा, इसलिए स्थिति उदय हमेशा एक समय का होगा। और अनुभव उदय जो उसका अभी फल देने के लिए तैयार है, क्योंकि बांधा था तब कुछ और अनुभव होगा, हमने देखा था जीव के परिणामों के कारण उसमें बहुत सारी उथल पुथल हो गई, संक्रमण होगा या उसमें उत्कर्षण अपकर्षण कुछ कुछ होता गया, तो अभी जो उदय के समय जितना उसका रस है उसको कहते अनुभव उदय। बांधा था तो हमने उसको अनुभव बंद कहा था और यह अनुभव उदय, तो जीव जो सुखी दुखी हो रहा है वो अनुभव के कारण, क्योंकि जैसा वहाँ कर्म का अनुभव है वैसे जीव उसमें यदि जुड़ता है मोहनी के कारण, अपने मोहराग द्वेष परिणामों के कारण, तब उसमें वो सुखी दुखी होता रहता है, इसलिए इसको अनुभव उदय कहते हैं। परंतु यदि जीव उसमें न जुड़कर यानी जो उसका कर्म का फल हमने देखा था आठ कर्मों का अलग अलग है, तो वो अपना स्वरूप मानता है या मेरा मानता है या उतना ही मैं हूँ हिस्सा मानता है, ये सारे हमने डिटेल में देखे थे। तो यदि उसमें नहीं जुड़ा, ये कर्म के फल को कर्म का फल जाना, अपने से भिन्न उसने जान लिया और शुद्धोपयोग में रहा, तो उसने कर्म के फल को स्वीकारा नहीं, कर्म तो फल रहा पर इसने लिया ही नहीं, वहाँ आशा तो वेगी है परंतु उसने उसने दुख माना ही नहीं, क्योंकि उसको अनिष्ट बना, उसका खलास हो गया उसमें, इसलिए उसको कहते वो जुड़ा नहीं या उसने उसका फल नहीं स्वीकारा। इसलिए अनुभव उदय हुआ नहीं, परंतु स्थिति उदय, प्रकृति उदय, प्रदेश उदय तो हुआ, कर्म अकर्म रूप हो गया, इसलिए इसे निर्जरा कहते हैं, यानी जो निर्जरा भी उदय ही है। हमने देखा ना अनेक इतने सारे निषेकों का वहाँ उदय हो रहा है, एक समय प्रबुद्ध का नहीं, असंख्यात समय प्रबुद्ध एक साथ निकल जा रहे, परंतु उसका जो अनुभव है उसमें जीव जुड़ नहीं रहा, तो जुड़ नहीं रहा तो उसने लिया ही नहीं, ये कर्म कुछ सुख दुख नहीं देते हैं, जीव उसमें सुख दुख मानता है कि ऐसे अभी साता आशाता ने कुछ सुख नहीं दुख नहीं दिया। साता आशाता के उदय में यदि वहाँ मोह कर्म होगा तीव्र, तो उसमें जीव तीव्रपने उसमें हर्ष विषाद के परिणाम करता है, अभी मोह ही मंद हो गया, जैसे निर्मोही मुनिराज है, तो उनमें साता आशाता में उसमें हर्ष विषाद कुछ नहीं होता, उनको वो समता भाव उनका बना रहता है, और कोई मिथ्या दृष्टि जीव होगा तो तीव्र दुख है तीव्र हर्ष के परिणाम होते, हर्ष भी कितना तीव्र होता है, हम देख रहे हैं वो टीवी और कोई मैच जीतता है तो कैसा हो जाता है, जैसे उछल जाता है, ये हर्ष के परिणाम, और कुछ संकट आए कुछ मर गया घर में तो कैसा हाय 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 हाय, तो ये तीव्र है, वो वहाँ जो घटना घटी कर्मों ने तो वो घटना नहीं बनाई है, घटनाएं तो अपने अपने योग्य से बनेगी। साता में जीव उसने सुख या दुख रूप, साता में सुख रूप परिणामित होता है, असाता में यानी उसमें निमित्त बनते। बाह्य ये फर्नीचर उसने लाया, उसने ये घर हमसे ले लिया, ऐसा कुछ नहीं बनता क्योंकि ये तो कारमान वर्ग है। और बाकी जो हमें दिखाई देते वो तो सारे आहार वर्ग है, वो पुद्गल अपने कारण से परिणमता है। अभी पंखा लाना या पंखा घुमाना ये साता असाता का काम नहीं है, परंतु जो है वहाँ उसमें जीव को सुख बुद्धि होना या दुख बुद्धि होना ये साता असाता का है, परंतु वो डिटेल है ना, इसलिए हम खाली ऐसे बता देते प्राथमिक जीवन के लिए। वो संयोग अच्छे मिलना वो साता का काम है, ये साता कुछ धन भी नहीं लाता है। यानी बाह्य चीजों का लाना या मिटाना ये साता असाता का काम नहीं है, उसमें सुख बुद्धि या दुख बुद्धि होना। वेदनीय था ना, जीव को वेदन होना, इसलिए कभी कभी उसको घाती के साथ जुड़ा देते हैं। ज्ञान आवरण दर्शन आवरण वेदनीय मोहनीय ऐसा भी कहते ना, मोहनीय वेदनीय, क्यों? क्योंकि उसमें जीव का सुख दुख जुड़ा हुआ है, इसलिए उसके साथ उसको गिनते हैं कभी कभी। कौन सा अभाव है? कारमान वर्गना और आहार वर्गना, उसमें कौन सा अभाव है? क्यों? दोनों ही पुद्गल की वर्तमान पर्याय है, पुद्गल द्रव्य के वर्तमान पर्यायों में अन्योन्य भाव होता है, इसलिए वो कुछ लाता पीता नहीं है, कुछ नहीं करता है। हाँ, उपचार से वैसे कहते हैं। पुण्य पाप में तो बहुत सारी प्रकृतियाँ हैं, साता एक प्रकार की पुण्य प्रकृति है। पुण्य प्रकृतियाँ तो हमने गिनाई थी, याद है कितनी? भूल गए सब, पत्नी जी को याद है, हमने तो खाली सुनी थी। 42 तो पुण्य प्रकृति है और 84 तो पाप प्रकृतियाँ है, उनमें से एक प्रकृति साता है। पुण्य में से बहुत सारी है पुण्य प्रकृतियाँ, और असाता की भी 84 है, ये सारे मिथ्यात्व की जो अलग दो साथ में लेकर 84 या 82 ऐसे बता दें। तो इतनी सारी पाप प्रकृतियों में से एक है असाता, वन ऑफ द पाप प्रकृति। ये अकेला साता है ने पुण्य और असाता है ने पाप, ऐसा नहीं समझाए कैसे ना। अभी जिसको कुछ मालूम नहीं डिटेल्स, अभी हम भी उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा अभ्यास नहीं हुआ है, आपने प्रश्न पूछा इसलिए। देखो निर्जरा हुई नहीं है 72 पेज पर, कुछ लोग दुख के प्रसंग में शांतिपूर्वक दुख सहन करते हैं, उसमें त्रसित नहीं होते, शोक विलाप आदि नहीं करते, इसके लिए समय दर्शन होने की जरूरत नहीं है। ऐसे भी जीव जो है उस शांति धारण करके आया है प्रसंग, चलो अभी वो निकल जाएगा ऐसा सोचते हैं और उसमें बहुत क्लेश नहीं करते, इसे अकाम निर्जरा कहते हैं। निर्जरा तो हुई, कितनी हुई? एक एक समय प्रबुद्ध जी, एक एक नीचे खिरा। यदि वो समय दृष्टि नहीं है, मिथ्या दृष्टि है, तो उसका एक समय में एक समय प्रबुद्ध खिरेगा। परंतु मोक्ष मार्ग में यह कुछ काम की नहीं है, इसलिए यह अकाम निर्जरा कहलाती है। उसके नाम के ऊपर हम जरा ध्यान है, अकाम कुछ काम की नहीं, हम कहते ना कुछ काम की है, यानी कुछ काम की नहीं है। परंतु आत्मलीनता द्वारा अर्थात शुद्धोपयोग द्वारा जो निर्जरा होती है वह संवर पूर्वक की निर्जरा है। देखो संवर पूर्वक की यानी देखो जब समय दर्शन प्राप्त हुआ, मिथ्यात्व अवस्था में जितनी कर्म प्रकृतियाँ बनती थी, अब समय दर्शन चौथे गुण स्थान में जीव गया तो 41 प्रकृतियाँ तो बंधने से रुक गई, उसका वो आती ही नहीं, बंधने का तो सवाल ही नहीं, आश्रय ही रुक गया उसका, तो संवर हो गया उसका, बाकी बंधने योग्य बंधेगी। तो इतनी तो बंधना अभी रुक गया कि नहीं, और जो है ऑलरेडी उसमें से अभी हमने जो देखा बहुत सारा आकर्षण होकर वो निकल जाता है, एक एक समय में बहुत सारे निषेक निर्जरित हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं संवर पूर्वक की निर्जरा। इसलिए ये जो शास्त्र में आता है कि करोड़ों भवों में तप तपने से जितनी निर्जरा नहीं होती अज्ञानी की, उसकी ज्ञानी की एक समय में एक क्षण में होती है, क्योंकि उसकी तो एक एक समय की एक एक निर्जरा होती, एक एक निषेक और फिर नया नया बंध चालू है, इसलिए उसमें कर्मों में कुछ कटौती होती ही नहीं है। और ज्ञानी एक एक समय में असंख्यात गुना निर्जरा होती रहती है। हमें लगता है नहीं ऐसा खाली लिखने के लिए लिखा है, ऐसा है नहीं, ये सारा साइंटिफिक है, बताने के लिए नहीं है ये, चलो जरा इसका अतिशयोक्ति करके बता दो तो लोग इस मार्ग में, ऐसी कोई बात नहीं, ये सारा निश्चित है और उसकी संख्या भी निश्चित है, कितना जाता है, कौन से अनुष्ठान में कितनी निर्जरा जाती है। हमने तो बहुत सीखा था यहाँ पाटनी जी और इंदु जी थे, निर्जरा कैसी कैसी होती है ऊपर के अनुष्ठानों में, एक एक समय में कैसा उसका प्रमाण है। इसे सकाम निर्जरा कहते हैं, यानी जो आत्मज्ञान पूर्वक की जो निर्जरा चल रही है समय दर्शन होने के बाद, जो ये सच्ची निर्जरा समर्पण पूर्वक की निर्जरा, हर समय जो उदय आता है उसको भी निर्जरा कहते हैं, वो वाली निर्जरा नहीं, ये समर्पण पूर्वक वाली जो मोक्ष मार्ग की जो निर्जरा है उसको सकाम निर्जरा कहते हैं। समर और निर्जरा दोनों को मोक्ष मार्ग कहा है। निर्जरा अन्य दो प्रकार से भी कही जाती है, अभी ये विषय निकला है तो ये सविपाक अविपाक भी यहाँ समझाया है कि सविपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा, ये शब्द तो आते हैं शास्त्र में, कभी अर्थबोध नहीं होता तो हमें इसे टाल कर निकल जाते हैं, तभी उसका भी अर्थ देखेंगे। विपाक यानी कर्म का फल, अनुभाव उदय होकर अर्थात फल देकर कर्म की निर्जरा होना सविपाक निर्जरा है। विपाक के सह, विपाक यानी रस अनुभाव, उसका उदय हुआ, उसका जीव को अनुभाग भी मिला, उसका उदय हुआ तो उसको कहते हैं सविपाक निर्जरा, और फल दिए बिना ही कर्म का खिर जाना अविपाक निर्जरा कहते हैं। अविपाक निर्जरा और सकाम निर्जरा समानार्थी है, यानी जो संवर पूर्वक की निर्जरा है उसी को अविपाक निर्जरा भी कहते हैं। अब सवाल है क्षयोक्षम क्या है, दो प्रश्न पूछे थे ना, क्षय और क्षयोक्षम दोनों की बात नहीं की। इसमें कर्म की तीन अवस्थाएं गर्भित है, क्षय, हाँ, सविपाक और अविपाक। देखिए चार प्रकार की हमने निर्जरा देखी, एक तो सकाम और अकाम, और दूसरी सविपाक और अविपाक। सकाम अकाम तो ख्याल में आएंगे, सकाम मैंने मोक्ष मार्ग में काम की है, अकाम मैंने कुछ काम की नहीं, हाँ ज्ञानी की होती है, अकाम मैंने हर समय चल रहा है परंतु वो मंद कषाय पूर्वक सहन कर लेता है, दुख के प्रसंगों में बहुत तीव्र संकलेश नहीं करता है, कोई आम ऑर्डिनरी मानुष ये आदमी हो चीज भी कोई भी कर सकता है, तो उसको ये अकाम निर्जरा कहते हैं क्योंकि मोक्ष मार्ग में कुछ कार्यकारी नहीं है। अब सविपाक और अविपाक, विपाक यानी कर्म का फल, तो ये कर्म का फल मिलता है जीव को और जीव उसमें जुड़ जाता है, जुड़ गया तो ही उसका फल लिया ना उसने, अभी असाता में नहीं जुड़ गया। अभी मुनि पार्श्वनाथ ध्यान में लीन थे तो वहाँ तो बहुत उपसर्ग आया, उपसर्ग आया परंतु उन्हें उसमें उसमें उनको कोई दुख रूप परिणाम नहीं हुआ, तो असाता नहीं जैसा है ना उनके लिए, उन्होंने उसमें दुख रूप वेदन नहीं किया। यदि दुख रूप वेदन करते तो हम कहते कि उनका उदय यानी फल कर्म का फल ले रहे, परंतु कर्म का फल उन्होंने भोगा ही नहीं, ऐसा बाहर देखने वाले को हम समझाएंगे कैसे, हम ऐसा ही कहेंगे उनके असाता का उदय, परंतु उनका वो असाता का वो फल नहीं भोग रहे, वे तो अपने आनंद में लीन है, प्रचुर आत्मानंद में लीन, तो उसका वो फल नहीं ले रहे, तो उसको कहते अविपाक निर्जरा। उनके तो कर्म तो असाता परमाणु ही है, वो उदय में आ रहे हैं, उसका वो फल दे रहे, जीव नहीं ले रहा है, परंतु ये रुकेंगे नहीं, आप जो उदय में आए हैं वो उसी समय में निकल जाएंगे, अगले समय अगला निषेक उदय में आएगा, उसका कार्य वो कर रहा है परंतु जीव उसका कुछ फल नहीं ले रहा, तो उसको कहते हैं अविपाक निर्जरा। और सविपाक यानी उसमें जुड़ जाता है, जो उसमें सुख दुख रूप वेदन करता है तो उसको सविपाक निर्जरा कहते हैं। हाँ, देखो अभी अब सवाल है क्षयोक्षम क्या है, इसमें कर्म की तीन अवस्थाएं गर्भित है, कौन कौन सी, उदय, हाँ वो क्षयोक्षम शब्द में तो हमें दो ही शब्द क्षय और उपशम से क्षयोक्षम शब्द तैयार हुआ, परंतु उदय अवस्था भी उसमें है। उदय का न होना अर्थात उदय का अभाव क्षय कहलाता है। अभी किसके उदय का अभाव, ये सारी बातें समझाएंगे, पहले तो एक एक शब्द लेकर उसको समझाया है। तो यहाँ क्षय ने सत्ता में से नाश होना ऐसा इसका अर्थ नहीं है, सत्ता में तो पड़ा है परंतु उदय में नहीं आ रहा है, उसको कहा क्षय। इसी को उदयाभावी, उदय का अभाव, उदयाभाव, तो उदयाभावी क्षय कहते हैं। कर्म की उदीर्णा होकर उदय में न आना, सत्ता में पड़ा रहना उपशम है। यानी उदय का भी अभाव हो गया है। कोई कहा उदय नहीं है पर उदीर्णा तो हो सकती है, तो ऐसा भी नहीं है। और पूर्ण आवरण डालने वाली यानी सर्वघाती प्रकृतियों का वर्तमान काल में उदय न होना, यह स्पर्धकों का चाहिए। स्पर्धकों का ज्यादा अर्थ ख्याल में आएगा। हाँ, स्पर्धक निर्णय जास्त ये सर्वघाती स्पर्धकों का वर्तमान काल में उदय में न आना, भविष्य काल में यानी सत्ता में पड़े रहना, और उनका देशघाती स्पर्धक रूप से उदय में आना सूक्ष्म कहलाता है। इसे भी मैं समझाती हूँ। देखो, जो घाती कर्म तो हमने देखा था, उसके दो भेद, सर्वघाती और देशघाती। सर्वघाती यानी सर्व पूरा घात करेंगे, जैसे केवल ज्ञानावरण कर्म है उसका उदय सतत चालू है, और वो जीव के केवल ज्ञान वहाँ है ही नहीं है बिल्कुल। तो हम कहते वो केवल ज्ञानावरण यानी वो पूर्ण रूप से घात करने वाला है और उसका उदय बना रहता है। अब जो अन्य जो है मतिश्रुता उदी और मन पर्य, इसका जो ज्ञानावरण है वो देशघाती प्रकृतियां हैं। अब जो जो देशघाती प्रकृतियां है उसमें जो स्पर्धक यानी अनुभाग वाले, अभी ये पहले तो हमने निषेक रचना बताई थी, इसके अनुभाग रचना हम बता रहे हैं। तो इसमें मंद अनुभाग और तीव्र अनुभाग वाले जो अत्यंत मंद यानी उसमें शक्ति कम है, उसको है कौन सी प्रकृति? देशघाती प्रकृति है। ये पूरे ही देशघाती प्रकृति है। उसमें सबसे अधिक जो कॉन्सेंट्रेटेड कहो या बहुत अधिक अनुभव देने वाले हैं, उसको कहते सर्वघाती स्पर्धक। ये स्पर्धक, स्पर्धक यानी अनुभव शक्ति से युक्त ऐसी जो वर्गणाएं हैं उनको स्पर्धक कहते हैं। निषेक किसको कहते हैं? विशिष्ट स्थिति वाले जो कर्म परमाणु है उसको निषेक कहा। वहाँ स्थिति की अपेक्षा है और यहाँ अनुभव की अपेक्षा है, यानी विशिष्ट अनुभाग से युक्त जो वर्गणाएं हैं उसको स्पर्धक कहते हैं। तो इसमें सबसे ऐसे जो स्ट्रांग जो स्पर्धक है उसको हम कहते हैं सर्वघाती स्पर्धक। किसका भेद है? देशघाती प्रकृति का। प्रकृति देशघाती है, उसमें से कुछ स्पर्धक यानी कुछ वर्गणाएं हैं वो पूरा घात करती है, उसमें ज्यादा शक्ति है। और जो कुछ वर्गणाएं हैं वो देशघाती स्पर्धक है। तो इसमें हमेशा कैसा हो जाता है? उदय तो देशघाती का रहेगा और सर्वघाती हमेशा सत्ता में पड़े रहेंगे। तो इसको अभी सूक्ष्म समझना। अभी आप सूक्ष्म की परिभाषा आप मुझे एक एक छोटी छोटी बताइए, तीन उसके हिस्से करके। हाँ, देखो अभी ये वर्तमान काल यहाँ है नीचे। अब यहाँ सर्वघाती स्पर्धक कोई है नहीं है, कहाँ पर है? भविष्य में। इसलिए इसको कहा वर्तमान काल सर्वघाती स्पर्धकों का उदय का अभाव यानी उदयाभावी क्षय। बस अभी आगे उन्हीं यानी उन्हीं देश सर्वघाती स्पर्धकों का सद अवस्था रूप उपशम, यानी वो ऐसी कंडीशन उसमें डाली जाती है या ऐसी होती है कि वो सर्वघाती जो स्पर्धक है वो उदीर्ण होकर जल्दी उदय में न आ सके, उसी को कहते उपशम। सदवस्था रूप उपशम यानी है वही बने रहेंगे, उदीर्ण होकर जल्दी नहीं आ सके। आ सकेंगे तो सर्वघात हो जाएगा। देशघाती प्रकृतियां जो जो है, जो कोई ज्ञानावरण दर्शनावरण ये वीर्य की जो है और मोहिये की भी जो है उसमें ऐसा ही होता है। देशघाती प्रकृतियां उसमें वो दो विभाग है, सर्वघाती स्पर्धक यानी अधिक घात करने वाली वर्गणाएं और ये बिल्कुल घास यानी हमेशा कुछ खुला ही छोड़ेगी, हम कहते हैं ना आवरण पूरा नहीं डालेंगे, कुछ न कुछ खुला रहेगा, वैसे इसमें जो देश घास की स्पर्धक है उन्हीं का उदय होगा, क्योंकि ये कम ज्यादा वाले ऐसे ना, ये अधिक सबसे अधिक अनुभाग कम है, कम कम कम, ये नीचे वाला कम दिखाया है, तो इन्हीं का उदय होगा, अधिक वाले हमेशा भविष्य में पड़े रहेंगे। तो अभी क्षोभ की व्याख्या कैसी है कि सर्वघाती स्पर्धकों का, ये भविष्यकालीन स्पर्धकों का उदयाभाविक है, वो उदय में नहीं आ रहे, तो क्या हो रहा है, वहीं पड़े रहेंगे, उसका उपशम भी नहीं हो सकेगा, सॉरी उपशम नहीं, उसकी उदीर्णा भी नहीं हो सकेगी, यानी नहीं तो पॉसिबिलिटी है यदि उदीर्णा हो जाए तो उदय में आ जाए, तो वैसा भी नहीं हो सकता है। ये दो कंडीशन हो गई, यानी क्षय और उपशम है वहीं बने रहा है, तो अभी उदय किसका होगा, तो देशघाती स्पर्धकों का उदय, इसको कहते क्षोभम आगे। अभी अभी आसान हुई है, हाँ हाँ, ये सारा देशघाती स्पर्धक देशघाती प्रकृति है पूरी, अभी ज्ञानावरण प्रकृति है, अभी मति ज्ञानावरण की बात करेंगे, तो मति ज्ञानावरण में भी सर्वघाती स्पर्धक अति स्ट्रांग ऐसे स्पर्धक है कि अगर उदय में आए तो ज्ञान का भी पूरा नाश कर जाए, परंतु कभी हो ही नहीं सकता है, तीन काल में हमेशा उदय उनके देशघाती स्पर्धकों का ही होगा, जब ये उदय योग्य हो गए तो देशघाती रूप होकर उदय में आएंगे। स्पर्धक यानी अनुभव शक्ति से युक्त वर्गणाए, अभी दो तीन बार दोहराया था, हाँ लिखा है ना, यानी निषेक यानी स्थिति की अपेक्षा, परमाणुओं का समूह को ही निषेक कहते हैं, वहाँ भी निषेक में बहुत सारी वर्गणाए हैं, परंतु वो स्थिति की अपेक्षा है, कम स्थिति है ज्यादा स्थिति, अब यहाँ जो स्पर्धक कहते हैं वो कम अनुभाग वाली वर्गणाए उसको ये देशघाती स्पर्धक है, बहुत अनुभाग वाले है वो सर्वघाती, ख्याल है ना ये, क्योंकि शास्त्र में तो हम पढ़ते हैं परंतु इसे क्लियर अर्थ नहीं होता तब तक उसका ख्याल नहीं आता है। क्षोभम की अभी ज्यादा आपको ख्याल में आई होगी इंदुबेन, अभी पता चल रहा है ना, क्योंकि वो परिभाषा तो हमने बहुत बार रख ली है, हाँ, तो अभी जब ऐसा समझते हैं कि उसका उदय का न होना वही क्षय है, ऊपर ही बने रहा सद अवस्था, यानी जहाँ है वहीं पर उसकी अवस्था बनी रहेगी, क्योंकि जब जब उदय में आएगा तो उसके अनुभव कम होकर ही उदय में आएंगे, अनुदय अलग बात है, उदय का बने रहेंगे, हाँ उदय नहीं है परंतु उसको क्षय का, उदय का न होना वो क्षय, उदय का अभाव, देखो अभी इसको कोई ये पढ़ा ना, क्षोभम कहलाता है लास्ट लाइन यहाँ की, ज्ञान दर्शन वीर्य का घात करने वाले ज्ञानावरण दर्शन और अंतराय कर्म का क्षोभम होता है, अर्थात ये कर्म उन गुणों का पूर्ण रूप से घात नहीं कर सकते, उन पर पूर्ण आवरण नहीं डाल सकते, कुछ प्रमाण में तो ये गुण पर्याय में प्रकट होते ही है, इसे हम हमेशा कहते ज्ञान का क्षोभम है, ज्ञान का उघाड़े कहते हैं तो ज्ञान का क्षोभम कहते हैं ना, ये ज्ञानावरण कर्म का क्षोभम चल रहा है इसलिए कहते हैं ज्ञान का क्षोभम है। कर्म में एक ख्याल में आया सारा, क्षय और उदय ये अभिक्षोभम भी दोनों बातें, कर्म में उदय उपशम क्षोभम और क्षय अवस्थाएं होती है, उसी समय जीव के जो भाव होते हैं उन्हें अनुक्रम से औदयिक, देखो कर्म के उदय है तो यहाँ जीव के भाव है औदयिक, औपशमिक क्षाउपशमिक और क्षायिक भाव कहते हैं। जीव का परिणमन जीव में और कर्म का परिणमन कर्म में होता है, इसे हमने पहले विस्तार से देखा ही है, इसके पहले वाले पाठ में हमने देखा था कि पूरी एक एक अवस्था उसकी अपने अपने में होती है, कर्म की कर्म में और जीव की जीव में अपने कारण से, कर्म की किसी भी अपेक्षा से रहित ऐसा जो जीव का भाव है उसे पारिणामिक भाव कहते हैं। ये चार भाव तो ख्याल में है, औदयिक औपशमिक क्षाउपशमिक और क्षायिक, तो उसमें कर्म की विशिष्ट विशिष्ट अवस्था है सामने, तो क्षायिक भाव कितने प्रकार के देखे हमने, यहाँ नहीं देखे पहले देखे थे, हाँ तो कौन कौन से कर्मों में है, हाँ बोलो ना, साई भाव कौन कौन से हैं? नहीं, क्षायिक ज्ञान ऐसा करो, क्षायिक ज्ञान, क्योंकि ज्ञान को बताना है ना, जीव के गुणों को बताना है, क्षायिक भाव बताए, क्षायिक कर्म, कर्म का क्षय कितने होता है तो कहेंगे आठों कर्मों का क्षय होता है, परंतु क्षायिक भाव नहीं। हाँ, क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन, क्षायिक चारित्र, हाँ और कौन सा है? हाँ, भोग, उपभोग और वीर्य। क्षायिक पहले कौन सा लिया? क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन, क्षायिक सम्यक पर गया। सबसे पहले तो क्षायिक सम्यक पर होता है जीव को, क्षायिक सम्यक, क्षायिक चारित्र, और ये पांच, ऐसे नौ, ये क्षायिक भाव कहलाए जीव के। ऐसा नहीं कहना कि आठ कर्म है तो उनके कर्म से आठ जीव के भाव हो गए, ऐसा नहीं है। ये घाती कर्मों में ही सारे लिए, पांच, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, यानी क्षायिक दान, क्षायिक लाभ, क्षायिक भोग, क्षायिक उपभोग और क्षायिक वीर्य, ऐसा ही ना उसमें, उसकी पर्याय पूर्ण विकसित पर्याय। देखो कर्म की अपेक्षा से इसके भाव भेद करना भी है ना, ये सारे किसमें घट गए? घाती कर्मों में, क्योंकि वो जीव विपाकी होते हैं ना, तो जीव के क्षायिक भाव किसमें होंगे? वो अन्य चार क्षय होगा तो वो क्षायिक भाव नहीं कहलाएंगे, वो पुद्गल में उसका फल मिलता है। ये इस तरह से अगर हम किसी भी बात को सोचेंगे अलग अलग एंगल से तो वो ज्यादा हमको भाषित हो जाते हैं, यानी इसका अर्थ क्या हुआ? सर्वघाती जो ये सारे घाती जो कर्म है उनके क्षय से जो होने वाले हैं वो सारे क्षायिक भाव है ना। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय में दो लेना, दर्शन मोहनी के क्षय से क्षायिक सम्यक्त और क्षायिक चारित्र, आसान हो गया ना। अभी अभी क्षायिक भाव कभी नहीं भूलेगी, चार घाती कर्मों को याद करो और उसका फल देखो, और औपशमिक में अकेले मोहनीय में लेना, मोहनी के दो, औपशमिक सम्यक्त और औपशमिक चारित्र, अभी क्षय औपशमिक में ले लो। हाँ, वो ज्ञान की लेना, वो क्षौक्षमी भाव आता है सारे, हाँ, मति, सुत, अधिकय, मनपरिय, वो चार हो गए, क्योंकि केवल तो वो सर्वघाती हो जाता है ना वो। इस तरह से वो सारा सोचना उसके ऊपर। औदयिक में भी मुख्यता तो मोहनी की है, मुख्यता मैंने कही, क्योंकि उसमें भी वो इसके भी आते हैं ना, गति आती है, कषाय आते हैं, लेशाय आती है, वो तो मोहनी के साथ जुड़े हैं, यानी उसकी वो 21 भाव है। अज्ञान भी है, असंयम भी है, मिथ्यात्व भी और असिद्धत्व भी है, तो अलग अलग हम कर्म की अपेक्षा से उस पर सोचेंगे तो अधिक उसका स्वरूप भाषित हो जाता है। देखो कर्म की किसी भी अपेक्षा से रहित ऐसा जो जीव का भाव है उसे पारिणामिक भाव कहते हैं। इस परम पारिणामिक भाव के आश्रय से अर्थात इसी में मैंपना स्थापित करके इसी को ज्ञान का गेय, यानी उसी को जानते रहने से श्रद्धा का श्रद्धेय, श्रद्धा का श्रद्धेय यही मैं हूँ, उसमें मैंपना स्थापित करना, अपनापन स्थापित करना, इसको कहते हैं श्रद्धा का श्रद्धेय। अकेले उस पर विश्वास रखना ये नहीं, श्रद्धा का श्रद्धेय नहीं, मैं स्व स्वरूप उसको ले लेना, उसमें आत्मपन भाषित होना, और ध्यान का ध्येय यानी उसी को जानते रहना, उसी में लीन होना, पर सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। उसमें स्थिरता द्वारा मोक्ष मार्ग पर अग्रेसर होकर पूर्ण स्थिरता द्वारा सर्व कर्मों का क्षय होकर निष्कर्म मोक्ष दशा की प्राप्ति होती है। यानी ये जो हमने अभी जो ध्यान का ध्येय, ज्ञान का ध्येय, श्रद्धा का से परिणामिक भाव है उसको ही जानते रहो, उसको ही अपनापन करो उसमें, और उसी को उसी में लीन हो जाओ, तो क्या होगा? मोक्ष मार्ग प्रकट होगा, यानी सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। और उसी अभी सम्यक दर्शन हुआ, अब आगे बढ़ने के क्या करना पड़ेगा? मुनि बना धारण करना पड़ेगा, कितने व्रत लेने पड़ेगा, वही वही मार्ग है, उसी को जानते रहो। उसी को जानते रहने से पर्याय में अन्य भी वो शुभ भाव आते रहेंगे, परंतु मार्ग कितना है? इतना सा, कि जिसको जानने से समय दर्शन की प्राप्ति हुई है उसी को ज्यादा और जानते रहो, उसी में अधिक अधिक क्लीनता करते रहो, तो पूरा आगे आगे वाला मोक्ष मार्ग प्रकट हो जाएगा, मुनिपना वगैरह सारा आ जाएगा अपने आप। अभी मैं कैसा मुनिपना ले लूँ, क्या करूँ, कितने व्रत पालू, ऐसा कोई उसको विचार भी नहीं आएगा समय दृष्टि को। जीव पर्याय में पूर्ण शुद्ध स्वरूप में विराजमान होता है। कर्म का अभाव होने के बाद नो कर्म या भाव कर्म होने का सवाल हमने देखे ना, वो तो कर्म जब तक है जीव उसमें गिरता भी है, उसका योग भी है, तब तक वो नो कर्म को भी खींचता रहता है, नो कर्म को भी ग्रहण करता है। यानी कर्म के उदय में इसको भाव कर्म भी है उसके, और नए कर्म भी बांधता है और नो कर्म भी लेता है। हमने देखा था योग का परिणाम जब तक है तब वो नो कर्म को भी लेता रहता है। ये सारा 13वें गुण स्थान पर। 14वें में तो शरीर के परमाणुओं का ग्रहण भी नहीं है, पुराना जो है वो पड़ा रहेगा एक अंतर्मूर्त तक, और बाद में उसका भी यानी वो भी फिर बिखर जाएगा। तो इसलिए कर्म का अभाव होने के बाद नो कर्म या भाव कर्म होने का सवाल ही नहीं उठता। इसलिए अनंत काल तक यह जीव शुद्ध स्वरूप में यानी सिद्ध अवस्था में अनंत अव्यवहार सुख का आस्वाद लेता रहता है। बेटियों, कर्म संबंधी अज्ञान है तब तक कर्म बलवान है ऐसी भ्रांति होती है, परंतु उनकी अवस्थाओं का ज्ञान होने पर समझ में आता है कि जीव ही बलवान है। अनादि से मैंने अनंत अनंत कालमान वर्गणाओं का ग्रहण किया और छोड़ा, परंतु मेरे स्वभाव में यत्किंचित भी फर्क नहीं पड़ा। क्योंकि कहाँ कहाँ नरक निबोध में कितने बार हम घूमते फिरते आए हैं यहाँ तक, फिर भी हमारा जो स्वभाव है उसमें थोड़ा भी किंचित मात्र भी कुछ चेंज नहीं, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। क्या कहते हैं, अनंतानंत परावर्तन किए, पांचों परावर्तन, परंतु अपने स्वभाव में कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। स्वभाव जैसा का जैसा है, ये तो अच्छा हुआ ना, स्वभाव में से कुछ कम होता तो फिर वो सोचने की बात थी, मगर हम तो जैसे हैं वैसे परिपूर्ण हैं। मैं तो स्वयं सिद्ध अकृत्रिम परिपूर्ण सदैव ज्ञान दर्शन में विराजमान हूँ, ऐसे अपने बारे में हमारे बारे में सोचना है, मुझे किसने बनाया, तो मैं तो स्वयं सिद्ध हूँ। स्वयं सिद्ध हूँ तो कैसा हूँ, दुबला हिंदी हूँ क्या, तो या किसी ने बनाया भी नहीं, इसलिए अकृत्रिम भी डाला। हमें तो अकृत्रिम चैत्यागम की पूजा करते तो कितने ऐसे भाव विभोर हो जाते हैं हम, हाँ अरे अरे वाह वाह वाह, अकृत्रिम किसी ने बनाया नहीं, फिर अपने आप, और मुझे किसने बनाया। अरे वो मेरू पर्वत भी है अकृत्रिम है, परंतु उसमें भी कोई परमाणु स्थिर नहीं रहते, कोई परमाणु अनादि से मेरू पर्वत रूप नहीं है, उसमें भी जो कोई पृथ्वी का एक है जीव भी आते जाते हैं और उसके परमाणु भी निकल जाते हैं और नए आते वहाँ। जैसे ये शरीर कल जैसे आज दिख रहे हैं और इसमें अनंत परमाणु निकल गया और अनंत नए आए, तो वहाँ ये जो अकृत्रिम चैत्यालय है बिंब है वहाँ भी अनेक परमाणु आते हैं और चले जाते हैं, परंतु हम कैसे अकृत्रिम है, हमारे ऐसे कोई आता जाता नहीं है, सारे ही अनंत गुण जैसे के वैसे विराजमान है, अपना स्वरूप वैसे के वैसा है, परिपूर्ण है, उसमें कुछ घट है ही नहीं, कभी नहीं होने वाले, और सदैव यानी सदा एव हमेशा ज्ञान दर्शन में विराजमान हूँ। बेटियों, कर्म की अवस्थाओं का ज्ञान करके कर्म निरपेक्ष ऐसे स्वयं के परम पारिणामिक भाव का यानी स्वभाव का आश्रय लेकर हम भी द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म रहित सिद्ध अवस्था शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त करेंगे, इस मंगल भावना के साथ अब यह कर्म पुराण यही समाप्त कर रही हूँ। यानी कर्म के बारे में जो लिखना था उसकी अवस्था वगैरह तो यहाँ तक तो वो लिखती, अब यहाँ आगे गुणस्थान आदि जानने का प्रयोजन, गुणस्थान के संबंध में कुछ इसमें लेख जो है, आगे वाले तो हमने पढ़े जीव समाज वगैरह, तो गुणस्थान 20 प्ररूपणा में हमने देखे थे कि गुणस्थान एक प्ररूपणा है और बाकी अन्य 19 देखे थे, 14 मार्गणा और क्या क्या देखा था, जीव समाज, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, आहार और उपयोग, नहीं आहार तो मार्गणा में आया, उपयोग अन्य प्ररूपणा देख रहे थे, तो मैं मार्गणा वाली तो संज्ञा रहा गया। तो यहाँ गुणस्थान का जानने का जो प्रयोजन है, क्यों जानना चाहिए, उसकी आज हम चर्चा करेंगे। छोटा है ये पाठ, जयपुर शिविर से 25 अगस्त को लौटे। शिविर के कारण कुछ दिन पत्र लिखना नहीं हुआ, फिर भी मेरा चिंतन मनन हमेशा की तरह चलता ही रहता है। भेद ज्ञान के साथ साथ मैं अपने स्वयं के दोषों का अवलोकन करने का प्रयत्न करती हूँ। हे जीव कहकर अपने आप को संबोधन करके मैं स्वयं को ही अनेक बातें सिखाती हूँ, उनमें से कुछ विचार यहाँ लिखती हूँ, तुम भी उस पर विचार करोगी ऐसी मुझे आशा है। तुम्हारी ओर भी मेरी बेटियाँ इस दृष्टि से न देखकर, जीव की दृष्टि से देखकर मैं यह संबोधन कर रही हूँ। हे जीव, तू तो ज्ञान और आनंद का घनपिंड है, फिर भी तू दुखी क्यों है? क्या इसका कभी तूने विचार किया है? हम जीव कैसा है तो ये पोपट की तरह, वो ज्ञान दर्शन में है, ज्ञान आनंद में, वो जीव तो आनंद में, तो फिर दुख क्यों है? भी तो दुखी हूँ, अनुभव आ रहा है दुख का, तो इस पर कभी विचार किया? अरे मैं तो ज्ञान और आनंद का घनपिंड हूँ, घने ने पूरा पूरा ठसो ठस भरा हुआ हूँ, फिर भी ये दुख कहाँ से आया? दूसरों के संयोगों के प्रति देखकर तूने भी संयोगों को इकट्ठा करने में प्राप्त आयुष्य खो दिया। उसको घर है, उसको बंगला है, उसको इतनी गाड़ियां है, उसकी साड़ियां है, ये सारा हमको भी चाहिए। तो चाहिए चाहिए चाहिए, उसके प्राप्ति में पैसा भी चाहिए, तो पैसा चाहिए तो उसके पीछे पूरी जिंदगी बर्बाद की, फिर भी तो आपको लिथी रह गया। तो पैसे वाले सारे सुखी हो गए क्या इंदू भाई? नहीं हुए, ज्यादा दुखी हुए। हम अपनी ओर देखते, बचपन में हम कितने सुखी थे, और अभी सारा ये है माहौल, आजू बाजू सब अपना है, पैसा है, घर है, सारा है, तो कितनी आकुलता है। यह आकुलता ही दुख है, यह दुख राग द्वेष आदि शुभाशुभ भावों के कारण ही है, ही लगा, संयोगों के कारण नहीं है, अपने ही राग द्वेषों के कारण हम दुखी हैं। तेरा स्वभाव तो त्रिकाल ज्ञान और आनंद स्वरूप है, त्रिकाल लिखा है, सिद्ध भगवान होने के बाद आनंद स्वरूप होगा उसकी बात नहीं है। स्वभाव कैसा है तो त्रिकाल स्वभाव हमेशा रहता है, तो ज्ञानमय है, आनंदमय है, आनंद स्वरूप है। इस कारण यदि तेरा प्राप्त ज्ञान स्वभाव को जानने में लीन होगा तो उसमें अवश्य आनंद की अनुभूति होगी। देखो ये ज्ञान जहाँ लगता है, ये पूजा में कहते हैं जो ज्ञेय है वही तेरा भोग है, उसे तो भोग रहा है, जिसको जान रहे है उसी का तो हम भोग ले रहे हैं। अभी दुख को जानते रहो, दुख की पर्याय को जानते रहो तो क्या हो गए? दुखी। और स्वभाव जो सुखमय अनंत आनंद में है उसको जानोगे तो सुखी हो गए, सिंपल बात है ना। यानी उसमें कष्ट काहे का है? ज्ञान तो अपने पास मौजूद है, ज्ञान की हर समय एक एक पर्याय चल रही है, ज्ञान 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 ज्ञान, वो हमारा स्वभाव है। तो जानने के लिए हमारी कुछ कोशिश नहीं करनी, जानना तो हमारा स्वभावभूत धर्म ही है, तो हम किसको जाने, हमारे अपने हाथ की बात है ना। तो पर्याय में जो दुख रहे, राग द्वेष है, उसके उसको जानते रहेंगे तो हम दुखी होंगे। अब राग द्वेष तो रहेंगे, छोड़ो उसकी दृष्टि छोड़ो, अब जो स्वभाव है उसको गौण करो ना, और स्वभाव को मुख्य करके उसी को जानते रहो। तो स्वभाव जो आनंद स्वरूप है, तो पर्याय भी अपने को आनंद स्वरूप, वहाँ उसको आनंद में से स्वभाव से अतिंद्रिय सुख की प्राप्ति हो जाएगी। तो ज्ञान हम कहाँ लगाते हैं, इस पर ये सारा है। इस कारण यदि तेरा प्राप्त ज्ञान, यदि हमको बहुत ज्ञान हो जाएगा बाद में हम स्वभाव में लगाएंगे 10-12 शास्त्र पढ़कर, ये बात नहीं है। प्राप्त ज्ञान, क्योंकि हम तो सन्ने पंचेंद्रिय है, और जितना प्राप्त ज्ञान है उसी से हमारा कल्याण होने वाला है, और फिर बहुत ज्ञान बढ़ेगा फिर मेरे से सम्य दर्शन होगा, ये बात नहीं है। तो प्राप्त ज्ञान जो है वो स्वभाव को जानने में लीन होगा तो उसमें अवश्य आनंद की अनुभूति होगी, अवश्य लिखा है, बिल्कुल संदेह नहीं कि अगर हम लगाएंगे और नहीं होगा तो ऐसे जो तो कोई बात ही नहीं है। जिस समय ज्ञान अपने स्वभाव को पकड़ेगा उसी समय आनंद की प्राप्ति होगी। परंतु वही ज्ञान यदि शुभाशुभ भावों में जानने में भावों को जानने में अटक रहा अटका रहा तो उनका दुख रूप वेदन करेगा। हम तो शुभाशुभ ही भाव करते हैं, उसी को जानते रहते हैं, तो उसमें तो आकुलता है ही है, शुभ हो या अशुभ हो, तो ये आकुलता है वो भी जानने में आ रही है, तो हम अपने आप को दुखी महसूस करते हैं। अब स्वभाव की ओर देखना, ज्ञान जो है वो अपने ओर लगाना है, तो स्वभाव तो आनंद स्वरूप है, तो उसको जानते ही पर्याय में भी आनंद प्रकट हो जाएगा। तुम कहोगी क्या कहे, हमें तो स्वयं का ज्ञान नहीं है, ठीक है, अपने को जानना है, तो हम तो आत्मा का ज्ञान नहीं, हमको अपना ज्ञान नहीं है। प्रश्न है ना सबका यही, हमें तो अपना ज्ञान नहीं है तो अपने को कैसे जाने। हे ज्ञायक, क्या संबोधन किया, हे ज्ञायक, हाँ जानने वाला है, और क्या कहता है, मुझे अपना ज्ञान नहीं। संपूर्ण विश्व को जानने वाली सर्वज्ञ शक्ति से युक्त हे जीव, अभी भी संबोधन ही चल रहा है कि कैसा कारक है सर्वज्ञ शक्ति ना, सैतानी शक्ति में हमने सर्वज्ञत्व शक्ति देखी थी, तो सर्वज्ञत्व शक्ति से युक्त हे जीव, मैं स्वयं को ही जान नहीं सकता, ऐसा तेरा कथन तुझे हास्यास्पद नहीं लगता। देखो ये तीव्रता से अंतकरण से बात आई है, बेटियों को समझा है कि हे जीव तू तो ज्ञायक है, संपूर्ण विश्व को जानने वाली सर्वज्ञत्व शक्ति है, और मैं अपने को ही नहीं जानता ऐसे कहता है, तो मैं स्वयं को ही जान नहीं सकता ऐसा तेरा कथन तुझे हास्यास्पद नहीं लगता। तुझे तो दुनिया को जानने में रस है, रुचि है, इसलिए एक क्षण भर भी तू स्वयं की ओर मुड़ने का प्रयास भी नहीं कर रहा। तेरी प्रत्येक समय की ज्ञान पर्याय तेरे स्वयं में हो रही है, तेरे सर्व असंख्यात प्रदेशों में हो रही है, परंतु तुझे ज्ञायक का यानी जानने वाले का भरोसा नहीं है। ज्ञान नहीं है ऐसा नहीं का, क्या नहीं है, भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, उसकी कभी दृष्टि नहीं की, क्योंकि हमने तो समय सार में भी पढ़ा हमारे अनुभूत विषय कि हर समय हर पर्याय में ये मैं क्या अहिंसा है, हमें आबाल गोबाल सबको मैं यानी आत्मा अनुभूति में आ रहा है, परंतु वो कैसा, वो उसको उसने गलत रूप से मान लिया है, तो मैं हूँ ऐसा तो प्रत्येक खातरी है ना, तो हाँ मैं आया हूँ, मुझे ऐसा है, मुझे भूख लगी, मैं दुखी हूँ, यानी ये मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ, ये मैं का तो पता है, परंतु वो मैं कैसा है उसके बारे में इसका क्या है। तो ये तेरी प्रत्येक समय की जो ज्ञान पर्याय है वो तेरे में हो रही है, तेरे सर्व असंख्यात प्रदेशों में हो रही है, परंतु तुझे ज्ञायक का यानी जानने वाले का भरोसा नहीं, यानी ये सारा ही ज्ञान मेरे में मेरे असंख्यात प्रदेशों में हो रहा है, अभी भी जो जो सारा आवाज का ज्ञान हो रहा है, सामने चीजें उसका ज्ञान हो रहा है, वो कहाँ हो रहा है, वस्तु में से नहीं आ रहा है, मेरे में हो रहा है, और मेरे पूरे, क्योंकि हमने नहीं कहते पर्याय कितनी बड़ी होती है, कितनी बड़ी यानी ड्यूरेशन में, ड्यूरेशन एक समय का है और उसका क्षेत्र कितना है, जितना द्रव्य यानी असंख्यात प्रदेश। तो इसलिए यहाँ कहा कि ये जो ज्ञान की पर्याय है वो तेरे में हो रही है और तेरे असंख्यात प्रदेशों में हो रही है। अब ये पर्याय से भिन्न द्रव्य कहाँ ढूंढना है, ये इसके ये जो वर्ण गुण है इसके भी ये ग्रीन कलर है, यहाँ हरे रंग की पर्याय है, अभी हमको ग्रीन कलर ढूंढना है, ये ग्रीन है वो दिख रहा है, अभी हमको वर्ण ढूंढना है और पुद्गल ढूंढना है, तो जो ग्रीन है वही तो वर्ण है और जो वर्ण है वो पुद्गल का ही है, जहाँ ये वर्ण है उतना ही तो पुद्गल है, उससे भिन्न कोई पुद्गल नहीं। जैसे अभी हमारी जो वर्तमान ज्ञान पर्याय है वो कहाँ है, पूरे ज्ञान गुण में, वो ज्ञान गुण किसका है, वो आत्मा को कहाँ ढूंढना, देखो तो जानने वाले का भरोसा नहीं, मात्र ज्ञेय का ही भरोसा है, उसी को तो मात्र हमने ये देखा वो देखा वो देखा, ये सारे का तो पूरा डिटेल वर्णन करेंगे, ये ऐसा था वैसा था वैसा था, हमने ये सारा देखा, किसने देखा, मैंने, तू कैसा है पता नहीं है ना। देखो ज्ञेय से ही मुझे ज्ञान हो रहा है मानकर परज्ञेयों की तरफ ही तू आशा भरी निगाहों से ताक रहा है, क्यों ताक रहा है, तू उनमें से कुछ सुखाएगा, तेरा यह पागलपन तू कब छोड़ेगा, तूने सच्चे देव गुरु शास्त्र का आश्रय लिया वह बहुत अच्छी बात है, परंतु तू वहीं पर अटक रहा, यानी सच्चे देव शास्त्र गुरु का संयोग मिलना तो महान पुण्य का उदय का काम, सीधे सारे पुण्य से नहीं मिलता है, बहुत पहले बहुत कुछ पुण्य किया होगा उसका फल अभी हम भोग रहे, क्या कि देव शास्त्र गुरु का संयोग मिला, सच्ची वाणी सुनने को मिली, परंतु वहीं पर अटक गया। देव गुरु और शास्त्र से तुझे उपदेश मिला कि तू स्वयं भगवान है, अपनी ओर देख, परंतु तू ऐसा भोला निकला कि उनकी ओर ही देखता रहा। अभी यहाँ भोला लिखना पड़ेगा, मूर्ख तो नहीं लिख सकती थी। तो तू ऐसा भोला निकला कि उनकी ओर ही देखता रहा। शास्त्र में से ज्ञान प्राप्त होता है मानकर उसी में संतुष्ट होकर बैठ गया। यहाँ शास्त्र ज्ञान करने का निषेध नहीं, हमने इतने शास्त्र पढ़े, हमने इतना स्वाध्याय किया, तो उसी में संतुष्ट होकर बैठ गया। तो ये शास्त्र पढ़कर अभी मुझे कुछ और बाकी रह गया, ये ख्याल ही नहीं आया कि मुझे अपने को जानना, यही तो शास्त्र का प्रयोजन था। मैं 25-30 सालों से शास्त्र अभ्यास कर रहा हूँ कहकर बड़प्पन दिखाने लगा। ये स्वामी जी के बहुत सारे कहते हैं, हम 40-40 साल से स्वामी जी को सुनते आ रहे। समय दर्शन हुआ? अभी नहीं हुआ। तो ये किसने बड़प्पन माना? मैं इतने सालों से पढ़ रहा, यानी उसमें तो ऐसा लगना चाहिए था कि अरे इतने साल से भी नहीं हुआ तो मुझे क्या कमी है, तो उस पर सोचना चाहिए था कि अंतर्मूर्त हो सकता है, अधिक से अधिक 6 महीने में तो समय दर्शन होना ही चाहिए, तो कहीं पर मेरी भूल तो नहीं रह गई ना, इसको स्वयं को ही देखना है, कोई दूसरा आके नहीं बताएगा ये तेरी भूल है। शास्त्र में से आत्मा की यानी स्वयं की महिमा सुनकर अपने स्वयं की ओर मुड़ना छोड़कर क्या किया, तूने दूसरों को आत्मा की महिमा सुनाना प्रारंभ किया। इस सुनने वाले और सुनाने वालों की फौज तैयार हुई, प्रवचनकार और श्रोता सारी, प्रचार प्रसार करने में तो इतना मगन हुआ कि इसी को तूने अपने दुर्लभ मनुष्य पर्याय की इति कर्तव्यता मान ली। चलो मैंने इतना प्रचार किया, मैंने इतना प्रसार किया, ये हो गया मेरा कर्तव्य पार। लोगों ने भी तुझे अभिनंदन पत्र बहाल कर दिए और तू गुब्बारे की तरह मान कषाय से फूल कर अपने को बड़ा मानने लगा। उसमें भी अटक गए ना अभी, ये बाकी तो संसार सारा धंधादारी छोड़कर इसमें अटक गए। इसमें एक छोटी सी कमी इतनी रह गई कि जिस आत्मा की महिमा तो गुणगान करके दूसरों को सुना रहा था, वह आत्मा मैं स्वयं ही हूँ ऐसे सच्चे अंतकरण से तूने मानना चाहता। यदि तू ऐसा मानता तो तेरा उपयोग बिना किसी के सिखाए स्वसन्मुख हो जाता, फिर पूछना नहीं पड़ता है कि मैं उपयोग अंदर कैसे ले जाना, प्रैक्टिकल कैसे करना। तू स्वयं को ज्ञायक रूप में पहचान लेता और उसी क्षण तेरे आनंद का भंडार खुल जाता। उसके पश्चात भी तेरा सीखना सिखाना चलता ही रहता। समय दर्शन के होने के बाद कुछ सिखाना या सीखना छूट नहीं जाता, वो चलता ही रहता है। परंतु अब तू उसे अपना कर्तव्य नहीं मानता, उसमें तेरी कर्तृत्व बुद्धि कर्तव्य बुद्धि नष्ट हो जाती, आकुलता कम हो जाती, यानी मुझे ये करना ही चाहिए ऐसा उसमें कोई ज्यादा जोर नहीं रहता है। ये कोई भी शुभ भाव हो, पूजा है, विधान है, प्रवचन है, सीखना है, सिखाना है, तो वो तो चलते ही रहते, यथा योग्य शुभ भाव तो आने योग्य आते, उसका स्वामी तो अभी इसका छूट गया है। बेटियों, गुणस्थान मार्गनास्थान आदि संबंधी थोड़ा सा ज्ञान तो आवश्यक है। अध्यात्म ग्रंथों के अध्ययन से द्रव्यान योग जानना तो अति आवश्यक है, अति आवश्यक है ही, परंतु उसे पढ़ने वाला यदि करणान योग का निषेध कर रहा होगा तो ऐसे द्रव्यान योग के पक्षपाती व्यक्ति को, यानी एकांत हो गया, नहीं द्रव्यान योग ही कार्यकारी है, ये करणान योग वगैरह कुछ कार्यकारी नहीं है, ऐसे वाले को पंडित टोडरमल जी ने हे सूक्ष्माभास बुद्धि कहकर संबोधित किया है। ये सम्यक ज्ञान चंद्रिका की जो पीठिका है उसमें ये अलग अलग जो पक्षपाती है, कोई द्रव्यान योग का पक्षपाती उसको वो कहता नहीं, हम अपने आत्मा को ही जानते रहेंगे, बाकी सब बेकार। चरणान योग वाला कहेगा हम व्रतशील अंगीकार करेंगे, बाकी सब बेकार। ऐसे एक एक पक्षपाती को लेकर उन्होंने समझाया। जो धन का द्रव्य का पक्षपाती वो कहते हम अभी धन कमाएंगे, बाद में ये करेंगे, इससे क्या होता है, सारे पंडित वो धनवान के पास आकर बैठ जाते समझाते। ऐसे एक एक जीव को वहाँ समझाया। तो द्रव्यान योग वाले को कहा है हे सूक्ष्माभास बुद्धि आभास का सूक्ष्म वाले, वो कहते ना हमको सूक्ष्म की चर्चा, सूक्ष्म चर्चा, सूक्ष्म चर्चा, ये बहुत फैंस चल रहा है बहुत जगह। अहमदाबाद में गए थे, वहाँ कोई कलकत्ता वाला एक भाई आया था, हमको सूक्ष्म चाहिए और सूक्ष्म समझाओ, नहीं आपको चाहिए उतना सूक्ष्म समझाते हैं, और बहुत ही सूक्ष्म समझाना है समझना है खरेखर तो करना नियोग पड़ो, क्योंकि द्रव्यनियोग है ही स्थूल और उसको क्या होता है मैं सूक्ष्म पढ़ रहा हूँ इसलिए केवल ज्ञान से भिन्न में भगवान आत्मा हूँ। अरे वो कैसे क्या उसकी उसको कुछ नहीं है, तो सूक्ष्म 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 हम इतना भाई भेद किया आत्मा का कि पहचान नहीं सके, माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखे, इतने भेद किए। समझना किसको था, अभेद आत्मा को, समझाने के लिए भेद किए थे, भेद में ही रुक गया, अभेद को पकड़ा ही नहीं। तो अभेद को जानना वही तो आत्मानुभव है। तो भेद जो व्यवहार से भेद किए थे उपचार से, वो समझने के लिए कि आत्मा वस्तु क्या है, परंतु जब उसको जानना था तो भेद को सारे को गौण करना था, उसको भूल जाना था तब तो, और अभेद की अनुभूति करनी थी। तो इसके लिए यहाँ का एक सूक्ष्माभास बुद्धि कहकर संबोधित किया है। ऐसे जीवों को उद्देशित करने करके कहने की इच्छा होती है कि समय सार तो तूने पढ़ डाला, खाली पढ़ा नहीं पढ़ डाला, गुणस्थान मार्गणास्थान मैं नहीं हूँ, मैं तो एक गायक भाव हूँ, ऐसा बताने वाली गाथा भी तूने याद कर ली। तुझे यदि कोई पूछे कि गुणस्थान मार्गणास्थान क्या बला है कि जिनसे तू भिन्न है, वो उसमें तो आता है ना, मैं गुणस्थान नहीं हूँ, मैं मार्गणास्थान नहीं हूँ, मैं अमुक नहीं तमुक नहीं, तो ये क्या है कि जिससे तू भिन्न है तू नहीं है, तो क्या कहेगा, तो तू कहेगा कि कौन जाने मैं तो द्रव्य दृष्टि वाला हूँ, शरणागति योग से मुझे कोई प्रयोजन नहीं है। हे जी यदि तेरी ऐसी मान्यता होगी तो तू स्वयं को ही ठगा रहा है, तुझे इनके स्वरूप का ही पता नहीं है तो तू कैसे कह सकता है कि तू इनसे भिन्न है, उसका पता हो तो ही कह सकता है ना कोई कि ये मेरा नहीं, आपने कोई चीज देखी नहीं और बिना देखी कहेंगे आप कि ये मेरी नहीं है, मैंने बंद पेटी में साड़ियाँ रखी, ये साड़ी आपकी है, तो आप कहेगी नहीं मेरी नहीं, तो बिना देखे कैसे कही आपने, तो गुणस्थान मार्गनुस्थान पता ही नहीं क्या है तो इनसे मैं भिन्न हूँ कैसे कह सकते हो। संपूर्ण जिनवाणी चार अनुयोगों में रचित है, विभाजित है और चारों ही अनुयोगों का सार वितरकता है, किसी भी अनुयोग का निषेध करना जिनवाणी का निषेध है। हम करणानुयोग का निषेध करते तो किसकी, भगवान की वाणी का निषेध करें, भले अपने समझ में नहीं आ रहा है, हमारी बुद्धि नहीं चल रही है, परंतु अभिप्राय में तो निषेध नहीं चाहिए। हाँ बाबा ये पढ़ने योग्य है, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, इतना तो भी अंदर होगा, परंतु ये उसका निषेध नहीं होगा उसके बाद, तो जिनवाणी का निषेध होगा, और जिनवाणी का निषेध करना जिनेन्द्र भगवान का निषेध होगा। जो सर्वज्ञ का निषेध करता है वह सर्वज्ञ स्वरूपी निज शुद्ध आत्मा का निषेध करता है। देखो यहाँ तक अपने तक बात लाई, अकेले भगवान का ही निषेध नहीं है, तो अपना जो सर्वज्ञ स्वरूप है उसका ही निषेध हो जाता है। स्वयं के अस्तित्व का ही निषेध करने वाला जीव धर्म कैसे प्रकट कर सकता है। जिनवाणी तो स्यादवाद मुद्रित है, अर्थात भिन्न भिन्न अपेक्षाओं से वस्तु का वर्णन करके इस तरह हमें समझाने में आता है कि हम कहीं कुछ गफलत नहीं करें। शास्त्र में कर्म गुणस्थान मार्गणा आदि का ज्ञान हमें कराया है, क्योंकि उसे जानने से जीव के संयोग में रहने वाले अन्य द्रव्यों का, निमित्तों का, जीव के विभिन्न पर्यायों का यथार्थ ज्ञान हमें होता है। जीव और कर्मादि परद्रव्यों की भिन्नता इससे स्पष्ट रूप से ख्याल में आती है। जब कर्म की बातें नहीं जानते थे तो कुछ हाँ कुछ संदेह रूप बना रहता था, अब जब जानते हैं तो प्रत्यक्ष भिन्नता उसके ख्याल में आती है। हम कहते हैं अभी ये तो क्षय भाव जीव का है और ये क्षय जो है वो कर्म का है, उसमें बिल्कुल भिन्नता है, दो द्रव्यों की भिन्न भिन्न अवस्थाएं अपने अपने से होती है, एक दूसरे से कुछ संबंध नहीं है। पहले तो कुछ संबंध नहीं है तो स्वीकार करो, फिर संयोग बताने के लिए कहेंगे नहीं नहीं वहाँ जब यह होता है तो वो भी होता है, तो इसको निमित्त नैमित्तिक संबंध कहते हैं, परंतु पहले सबके साथ संयोग मानकर सबके साथ संबंध प्रस्थापित मत करो, पहले तो स्वतंत्रता सीखो, मेरे किसी भी द्रव्य के साथ कोई संबंध नहीं है ऐसा पहले स्वीकार तो करो, फिर व्यवहार से जो संबंध है वो देखेंगे, एक क्षेत्राव का है कि ये ज्ञायक है क्या, पहले तो किसी के साथ कोई संबंध नहीं, मैं तो एक ज्ञायक भाव हूँ, ऐसा पहले में जोर तो अंदर से आने दो। परंतु जो जीव इन सब शास्त्रों को निरर्थक मानता है और मात्र मैं शुद्ध बुद्ध ज्ञाता दृष्टा हूँ कहता रहता है उसका मत वेदांत जैसा एकांती होगा। क्यों? देखो वेदांत में भी आत्मा अनादि अनंत अविनाशी ज्ञाता दृष्टा अकर्ता अभोक्ता है ऐसा प्रतिपादन किया है, परंतु वे आत्मा को सर्वथा वैसा ही मानते। देखो सर्वथा एकांत हो गया ऐसा वो सर्वथा ऐसा ही है, पर्याय को मानते ही नहीं है, पर्याय में जो अशुद्धता है उसको स्वीकारते ही नहीं है। आत्मा सत है और जगत के अन्य सभी पदार्थ असत है, भ्रम है, माया है, ऐसा उनका मत है। आत्मा है बाकी अभी दिखते हुए भी बाकी कुछ है ही नहीं कहते, किसी का वो सद्भाव ही नहीं मानते, वे पर्याय को मानते ही नहीं है। धर्म और मोक्ष प्रकट करने का कार्य तो पर्याय में होता है, क्योंकि पर्याय में अभी दुखी इसीलिए तो प्रयत्न कर रहे हैं ना। आत्मा ज्ञाता दृष्टा है, सुख स्वरूप है तो है, अभी प्रयत्न क्यों कर रहे हैं? तो वर्तमान में दुखी हो ना तभी तो प्रयत्न चल रहे हैं मोक्ष के। पर्याय को अगर वर्तमान पर्याय को जो अभी अधूरी पर्याय है विभाव पर्याय है उसको स्वीकार नहीं करेंगे, उसका ज्ञान भी आवश्यक है, उसका लक्ष्य करने के लिए नहीं, उसका लक्ष्य छोड़कर स्वभाव का लक्ष्य करने के लिए। परंतु ज्ञान में अगर उसी को नहीं स्वीकारेंगे, श्रद्धा तो केवल मैं को स्वीकार करती है और ज्ञान सबको स्व को भी और पर को भी, जो जैसा है वैसा जानता है वो सम्यक ज्ञान है, और श्रद्धा अकेले मैं को मैं रूप से स्वीकार करती है। धर्म और मोक्ष प्रकट करने का कार्य तो पर्याय में होता है, पर्याय को ही नहीं मानेंगे तो उपदेश भी क्या काम का। अपनी अवस्था यानी भूमिका पहचानने वाला जीव ही ऊपर की भूमिका में जाने का प्रयास करेगा, जो मिथ्या तो अवस्था में उसे पता है अभी समय दर्शन नहीं हुआ तभी तो वो प्रयास करेगा। चौथे गुणस्थान वाले को पता है अभी तो मैं निचली भूमिका हूँ तभी तो और स्थिरता करके वो ऊपर के गुणस्थान प्राप्त करेगा। पर्याय को ही नहीं मानेंगे तो ये सारा कुछ होगा ही नहीं उसमें। इसलिए जीव की पर्यायों और संयोगों का ज्ञान करना आवश्यक है। जीव क्या है, अन्य द्रव्य क्या है आदि स्व तथा पर संबंधी नितांत अज्ञानी जीव को सर्वप्रथम जीव की पहचान कराने के लिए परद्रव्यों की सापेक्षता से समझाते हैं। कुछ मालूम नहीं क्या जीव है तो उसको कहेंगे ये जो कीड़ी है, चींटी है, ये जो हाथी है, ये जो मनुष्य है, ये जीव है, ऐसा समझाएंगे पहले संयोग की अपेक्षा। जैसे मनुष्य देहधारी जीव, पांच इंद्रिय वाला जीव, त्रसदायक जीव आदि कथन द्वारा जीव जिन संयोगों में पाए जाते हैं उनका ज्ञान करा के जीवों का अस्तित्व और स्थान निश्चित किया जाता है। जैसे जीव कहाँ रहता है, इस विश्व में रहता है, हाँ तो स्थान निश्चित करना है। अभी कहाँ है जीव तो कहते अभी जहाँ ये तू है ना, ये प्राप्त शरीर वहाँ तू है, इससे बाहर नहीं है, या पूरे शरीर में है अभी, अभी इस अंगूठे में ही जीव है, या ऐसा कुछ नहीं कि मेरा जीव वहाँ कहाँ है, वो पेड़ पर टंगा हुआ है, वो तोते में है मेरा जीव, ऐसा नहीं। ये सारी कल्पनाएं जो है तो इसलिए क्या कहते हैं कि पहले तो जीव है ऐसा सिद्ध करते हैं और फिर कहाँ है तो उसका स्थान भी निश्चित किया जाता है। जीव का जीवपना जीवत्व कायम टिकने के लिए उसे देह इंद्रिया कर्म आदि किसी भी परद्रव्य की किंचित मात्र भी अपेक्षा या आवश्यकता नहीं है। यानी जीव तो जीव रूप से सदा ही विद्यमान था और रहेगा और अभी भी है, देह है तो जीव है ऐसा नहीं है। अभी जीव कहाँ है इतनी उसको जानकारी दी है, पहचान कराई है, परंतु जीव का जीवपना उसके अपने से है, कर्म के कारण है, देह के कारण है, ऐसा बिल्कुल नहीं। परंतु समझने और समझाने के लिए दृश्य बातों का अर्थात पुद्गलों परपदार्थों और रागारिकों का स्वरूप बताया जाता है, क्योंकि वे बातें हमारे परिचय की है, अनुभव की है, उनके द्वारा जीवों का अनुमान कराया जाता है। ये शुरू वाले जीवों के लिए कभी जो जहाँ ये राग द्वेष कर रहा है, कौन कर रहा है, जीव कर रहा है ना। जैसे अभी कोई मर गया तभी यहाँ कोई जानने वाला था, यहाँ जो अभी वो रागी द्वेष भी नहीं हो रहा है, मृत शरीर पड़ा है वहाँ तभी वो उसमें कुछ नहीं दिखाई देगा, तो जो ये करने वाला था वो जीव था, ऐसा समझाएंगे शुरू में। तो ये अनुमान कराया जाता है। एक माँ अपने बेटे से कहती है कि जा रे बेटा रसोई घर से नमक ले आ। नमक कैसा होता है इस बात की जानकारी बच्चे को नहीं थी और वह कहाँ रखा है इसका भी उसे पता नहीं था। उसे यदि कहते कि नमक नमक जैसा है, नमक नमक में है, तो वह कुछ समझता नहीं। जैसे हम कहते हैं आत्मा तो आत्मा है, आत्मा आत्मा में है, आत्मा को कोई सा पाना, आत्मा आत्मा को आत्मा के द्वारा आत्मा में अपने को पाता है, तो कुछ समझ में नहीं आएगा अज्ञानी को। वैसे ये बालक की अवस्था हो, इसलिए माँ उससे कहती है कि बेटा रसोई घर में जा और सामने वाली अलमारी खोल, उसमें नीचे के पटिये पर दाहिने कोने में कांच की बर्नी है, उसमें नमक है, वह सफेद है, पर देख उसके बगल वाली बर्नी में नमक जैसी सफेद चीज है, वह पीसी हुई शक्कर है, नमक चक्कर देख वह खारा होता है, वो कहाँ है और उसका लक्षण क्या, ये सारे बताया। बालक ठीक तरह से समझ गया और उसने नमक ढूंढ निकाला। जब उसे नमक मिल गया और नमक नमक ही है ऐसा उसने लक्षणों द्वारा पहचान लिया, तब उसके ख्याल में एक बात आई कि नमक तो नमक में ही है, बर्नी पटिया अलमारी रसोई घर सब कुछ अपनी अपनी जगह पर है, परंतु नमक की प्राप्ति होने पर अब उनसे कुछ प्रयोजन रहा नहीं। 12वीं गाथा में क्या लिखा, व्यवहार सारा जाने लो प्रयोजनवार। पहले तो जानने के लिए, आत्मा को जानने के लिए उसके संयोग भी बताए और आत्मा के भी भेद करके समझाए कि ये ज्ञान है, ये दर्शन है, ये चारित्र्य, अनंत गुण है, ये संकल्प प्रदेश है, परंतु उनका प्रयोजन कब तक था, जब तक समझ में नहीं आया। जब आत्मा ख्याल में आया तब अब वो जाने थे, बस इतना ही उसका कार्य, जानने योग्य थे जब तक आत्मा को नहीं समझा था। वैसे अभी उसने नमक तो मिल गया और बाकी सारी चीजें अपनी अपनी जगह पर है, अभी उसके कुछ जान अभी उसके प्रयोजन की नहीं रही क्योंकि उसने उसको ढूंढ निकाला है। नमक का स्थान निश्चित करने के लिए उन्हें जानना जरूरी था, प्रयोजनभूत था, अब उन्हें जानते रहने की कोई आवश्यकता नहीं रही। जानते रहने का निश्चय किया, वो जानेगा भी कि ये ऐसा है, फिर दोबारा और किसी को दूसरे बच्चे को कहना तो वो बताएगा भी ऐसा ऐसा क्या, परंतु अभी उसी को जानते रहने से कोई नहीं क्योंकि उसको जो चीज चाहिए थी वो मिल गई। प्रयोजन तो नमक को जानने का था, नमक को जाना, अकेले जाना नहीं पहचाना, तो ही अन्य चीजों का जानना कार्यकारी होगा। उसने रसोई घर को जाना, अलमारी को जाना, पटिया को जाना, बर्नी भी देखी, परंतु नमक ही को नहीं जाना, तो ये सारा जानना भी कुछ कार्यकारी नहीं है। वैसे हमने जीव समाज पर्याप्ति पढ़ी, प्राण पढ़े और संज्ञा सारा ही और सारी मार्गणाएं पढ़ी, गुणस्थान पढ़े, सब कुछ हुआ और आत्मा को ही नहीं जाना, तो कितना पढ़ा, 11 अंग 9 पूर्व पढ़ा, क्या हुआ, ये बालक जैसा हो गया। तो प्रयोजन किसको, अपने को जानने का था, परंतु यदि अन्य सभी चीजों को जाना पर नमक को ही नहीं जाना तो अन्य चीजों का ज्ञान कुछ कार्यकारी नहीं। उसी प्रकार जिनवानी माता, वहाँ माँ ने बताया था ना बच्चे को, वैसे जिनवानी माता अज्ञ जीवों को यानी अज्ञानी जीवों को उनकी स्वयं की अर्थात जीव की पहचान कराने के लिए तो प्रथम जीव को खोजने के लिए 14 मार्गणाओं और 20 प्ररूपणाओं का विस्तृत वर्णन करती। ये सारा वर्णन किसके लिए, जीव को ही खोजना था हमको, बाहर से ढूंढ रहे ना, अभी इंद्रिय ज्ञान वाला है तो ये बाहर से ही जीव को ढूंढ रहा है, तो पहले बाहर से उसको पहचान कराते। गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, उपयोग और 14 मार्गणा, इस तरह 20 प्ररूपणा है। इसमें परद्रव्यों के सापेक्ष कथन है ही, जीव की अवस्थाओं का भी वर्णन है उसमें भी है ना, ज्ञान मार्गणाएं, कषाय मार्गणाएं वगैरह वगैरह, जीव की अवस्था भी उसमें बताई। इनके द्वारा जीव की सत्ता निश्चित करने के बाद लक्षण द्वारा शुद्ध जीव स्वरूप का अर्थात निज शुद्धात्मा का अनुभव करने का उपदेश दिया जाता है। पहले उस बालक को सारा बताया था, ये रसोई घर है, ये अलमारी है, वो सब पाटिया है, बर्नी है, उसमें वो नीमक है, वो सफेद दिखता है, वो फिर उसके लक्षण बताए। वैसे पहले तो ये सारी 20 प्ररूपणाएं बताई, ये गुणस्थान है, मार्गणा स्थान, ये 14 मार्गणा है और ये सारी अलग अलग बातें है, इनके द्वारा जीव को निश्चित किया भी। अब जीव को पहचानना है तो उसका लक्षण क्या है, तो ये उपयोग लक्षण वगैरह जो बातें हम द्रव्यनियोग में सीखते आए, तो पश्चात उसका अपना अनुभव करने के लिए उपदेश दिया जाता है। यदि जीव ने गुणस्थान मार्गणास्थान आदि जानकर पश्चात उनका लक्ष्य छोड़कर स्वयं को जाना तो ही उपरोक्त सभी बातें जानना कार्यकारी होगा, सार्थक होगा। तुम पूछोगी इन सब का लक्ष्य छोड़ना ही था तो प्रथम इनका लक्ष्य करवा ही क्यों, हम पहले से ही इन्हें जानना छोड़ देंगे। प्रश्न हमारा ये है ना, अरे इनको छोड़कर ही आत्मा को जानना है तो इनको इतना क्यों लपड़ा, हेड़े क्यों करे इतना। जिनका व्यवहार ज्ञान जिन मतानुसार यथार्थ नहीं है, उन्हें निश्चय जीव संबंधी ज्ञान यथार्थ होने की जरा भी संभावना नहीं है। देखो ये जो 20 प्ररूपणाएं है उसमें जिसकी कोलम पट्टी कुछ चलती है, न मुनि का स्वरूप जाने, न भगवान का स्वरूप जाने, न कुछ जाने, और मान लेना हमको समय दर्शन हो जाएगा हम आत्मा का ध्यान करेंगे, नहीं होगा। इसलिए क्या था, जिसका ये जिन मतानुसार लिखा है व्यवहार ज्ञान, यानी ये सारी बातें है ना 20 प्ररूपणा, ये तो व्यवहार संयोगों का ज्ञान कराया, परंतु उसके बारे में भी जो यथार्थता नहीं होगी और यथार्थ ज्ञान होगा तो उसको अपना भी ज्ञान नहीं होगा। सम्यक दृष्टि जीव को भी करणानुयोग के अभ्यास से इन विषयों का विस्तार पूर्वक ज्ञान होने से श्रद्धा सुदृढ़ होने में मदद होती है। बहुत डिटेल जानेगा तो ही सम्यक दर्शन होगा, ऐसी बात नहीं है, परंतु सम्यक दर्शन होने के बाद भी ये बातें जानता है तो उसको उसमें और ज्यादा भेद विज्ञान इतना उसका बलवान होते जाता है, तो उसका भेद विज्ञान तो चलता रहता है, भेद ज्ञान उसके अंदर ही अंदर चलता रहता है, फिर भी उसमें बहुत मदद मिलती है, पुष्ट हो जाता है, श्रद्धा सुदृढ़ होती है। हमने देखा ना वो दर्शन विशुद्धि, दर्शन की विशुद्धि कैसी होगी, ये विशुद्धि की बात, दृढ़ता आती जाती है उसमें। हम देखते हैं कि लोगों के अज्ञान का लाभ उठाकर समाज में अनेक प्रकार की बूंदगिरी चलती है। गृहस्थावस्था में रहकर अपने को आचार्य और भगवान कहने वाले महाभाग भी पाए जाते हैं, कहलाने वाले। गुणस्थानों के अभ्यास से मोक्ष मार्ग का स्वरूप, देव और गुरु का स्वरूप स्पष्ट रूप से अपने ज्ञान में आता है। अपनी भूमिका का अर्थात हम कौन से गुणस्थान में है इसका निर्णय हम स्वयं कर सकते हैं, यानी दूसरे किसी को पूछना नहीं पड़ता हमको समय दर्शन हुआ कि नहीं, अभी हमारा गुणस्थान कौन सा है, जीव को अपने आप की पहचान हो जाती है। तुम कहोगी प्रस्तावना इतनी लंबी लिख दी, उससे अच्छा होता कि विषय का ही प्रारंभ कर देती। तुम्हारा कहना भी ठीक है, हम आगामी पत्र में गुणस्थान संबंधी जानकारी लेंगे। तुम्हारी माँ। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो पालो, सोवाणी मस्तकन वो सदा देत होड़ो।